और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोखनी कुर्बानी और जबीहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया और काहिन खुदावन के घर में दाखिल ना हो सके इसलिए कि खुदावन का घर खुदावन के जलाल से मामूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावन का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इसराइल देख रहे थे, तो उन्होंने वही फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुक कर सिज्दा किया और खुदावन का शुक्र अदा किया कि वो भला है क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावन के आगे जबीहे ज़बह किए और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया और काहिन अपने अपने मनसब के मुताबिक खड़े थे और लावी भी खुदावन के लिए मौसीकी के साथ लिए हुए थे जिनको दाऊद बादशाह ने खुदावन का शुक्र बजा लाने को बनाया था जब उसने उनके जरिए से उसकी सिफारिश की थी क्योंकि उसकी रहमत अब भी है। और काहिन उनके आगे निरसिंगे फूंकते रहे और सब इसराइली खड़े रहे और सुलेमान ने उस सहन के बीच के हिस्सा को जो खुदावन के घर के सामने था मुकद्दस किया क्योंकि उसने वहाँ शोक की कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी चढ़ाई क्योंकि पीतल के उस मजबा पर जिसे सुलेमान ने बनाया था शोक की कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। और सुलेमान और उसके साथ हमाद के मदखल से मिस्र की नदी तक के सब इसराइलियों की बहुत बड़ी जमात ने उस मौका पर 7 दिन तक ईद मनाई और 8वें दिन उनका मुकद्दस मजमा फराहम हुआ क्योंकि वो 7 दिन मजबा के मखसूस करने में और 7 दिन ईद मनाने में लगे रहे। और 7वें महीने की 23वीं तारीख को उसने लोगों को रुखसत किया ताकि वो उस नेकी के सबब से जो खुदावन ने दाऊद और सुलेमान और अपनी कौम इसराइल से की थी खुश और सादमान होकर अपने डेरों को जाएं। यूं सुलेमान ने खुदावन का घर और बादशाह का घर तमाम किया और जो कुछ सुलेमान ने खुदावन के घर में और अपने घर में बनाना चाहा उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावन रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डाले या अपने लोगों के दरमियान बबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यही लगे रहेंगे। और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म दिया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आयन और अहकाम को माने, तो मैं तेरे तख्त सल्तनत को कायम रखूंगा जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद करके कहा था कि इसराइल का सरदार होने के लिए तेरे यहाँ मर्द की कभी कमी ना होगी। पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आयन और अहकाम को जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है तरक कर दो और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो اور ان کو سجدہ کرو، تو میں ان کو اپنے اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنے سامنے سے دور کر دوں گا، اور اس کو سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما بنا دوں گا، اور یہ گھر جو ایسا عالیشان ہے تو ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہو کر کہے گا کہ خداون نے اس ملک اور اس گھر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداون اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو اختیار کر کے ان کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی، اسی لیے خداون نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔